आवाज के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। सुनो कहानी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है मेरी एक संस्मरणात्मक कहानी, कर्मा जी की टुन्न परेड।
कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग, लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।
बात तब की है जब मैं दिल्ली में नौकरी करने आया था। नौकरी के साथ एक घर भी मिला था और साथ में थोड़ा बहुत फर्नीचर भी, मगर रजाई गद्दे आदि तो खुद ही खरीदने थे। मेरे एक सहकर्मी ने कहा कि वह मुझे अपनी कार से नजदीक के बाजार ले चलेगा और हम गद्दों को कार के ऊपर बांधकर घर ले आएंगे। सहकर्मी का नाम जानने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी सुविधा के लिए हम उन्हें फितूर साहब कह सकते हैं। फितूर साहब वैसे तो अच्छे परिवार से थे, लेकिन कोई ज्यादा भरोसे के आदमी नहीं थे। उनकी संगत भी खास अच्छी नहीं थी। उम्र में मुझसे 10-1 साल बड़े थे, लेकिन मेरी काफी इज्जत करते थे। मुझे बाजार की बहुत जानकारी नहीं थी, भाव तोल करना भी नहीं आता था, और ऊपर से वाहन के नाम पर केवल एक स्कूटर था। इसलिए मैंने फितूर साहब की बात मान ली। तय हुआ कि आते शनिवार की शाम को मैं उनके घर जाकर वहां से उनके साथ उनकी कार में चल दूंगा। शनिवार को हमारा दफ्तर आधे दिन का होता था, इसलिए मुझे भी कोई मुश्किल नहीं थी। तो साहब, शाम को जब मैं उनके घर पहुंचा तो उनकी पत्नी, बच्चे और माताजी से मुलाकात हुई, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आए। जब पूछा तो मां ने झुंझलाते हुए कहा, बरसाती में बैठा है मंडली के साथ, देख लो जाकर। मैं ऊपर गया तो पाया कि दफ्तर के कई सारे उद्दंड कर्मचारी एक एक गिलास थामे लंबी लंबी फेंक रहे थे। दो बाल्टियों में बर्फ से गढ़ी हुई कुछ बोतलें थी और कुछ बोतलें किनारे की बार में करीने से लगी हुई थी। फितूर साहब ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। मेरे लिए विशेष रूप से नरम पेय की व्यवस्था भी थी। मैंने महसूस किया कि एकाध लोगों को वहां एक नरम पेय वाले व्यक्ति का आना अच्छा नहीं लगा। उन लोगों का अपना घर होता तो शायद दरवाजा बंद कर देते, लेकिन फितूर साहब के सामने चुपचाप बैठे रहे। मेहमानों में मेरे एक और मुरीद भी थे। अजी, नाम में क्या रखा है, फिर भी आप जिद कर रहे हैं तो उन्हें कर्मा जी कहकर पुकार लेते हैं। कर्मा जी के हाथ में सबसे बड़ा गिलास था और वह ऊपर तक लबालब भरा हुआ था। बाकी सारी भीड़ रह रहकर कर्मा जी की कैपेसिटी की तारीफ कर रही थी। मुझे इतना अंदाज तो हो गया था कि उन लोगों की सभा लंबी चलने वाली थी। कोक की बोतल खत्म करते करते मुझे यह भी पता लगा कि पीने के बाद वे सभी भंडारा रोड पर डिनर करने जा रहे थे। मेरा वहां और देर रुकने का कोई कारण न था, सो अपनी बोतल निपटाकर मैं उठा। मेरा इरादा ताड़कर फितूर साहब उठे और जिद करने लगे कि मैं डिनर उन लोगों के साथ ही करूं, तभी तो मेरे सहकर्मियों से मेरी जान पहचान हो सकेगी। मेरे ना करने पर वे मेरा हाथ पकड़कर बोले, आप चले जाओगे तो हम सबका दिल टूट जाएगा। फिर फुसफुसाते हुए बोले, बिल इस कर्मा के बच्चे से लेंगे, हमेशा आकर मुफ्त की डकारता रहता है, बहुत पैसा लगता है मेरा इसकी दारू में। सुनकर मुझे अजीब सा लगा। पीने वालों का दिल साफ होने के बारे में काफी अफवाहें उड़ती रहती थी, लेकिन उनसे सामना पहली बार हो रहा था। मुझे फितूर साहब के दो मुहेपन पर क्रोध भी आया और कर्मा जी से सहानुभूति भी हुई। कुछ देर और पीने के बाद सब लोगों ने अपने अपने दुपहिए उठाए और गंतव्य पर निकल पड़े। मैं अपना स्कूटर फितूर साहब के घर छोड़कर उनकी कार में गया। रेस्टोरेंट छोटा सा था, लेकिन देखने से ही पता लग रहा था कि काफी महंगा होगा। इस रेस्टोरेंट में शराब परोसने का लाइसेंस नहीं था, लेकिन रसूख वाली जगह और कर्मा जी की पहुंच के कारण इन सब के लिए उनकी पसंद के पेय लाए गए। कर्मा जी मेरे ठीक सामने बैठे थे। जब वे कबाब खा रहे थे तो एक साथी ने बताया कि कर्मा जी वैसे तो शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन शराब पीने के बाद वे कबाब को शाकाहार ही मानते हैं। कबाब के बाद पहले उनके हाथ से गिलास छूटकर नीचे गिरा और फिर आंखें गोल गोल घुमाते हुए वे खुद ही मेज पर धराशायी हो गए। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को टुन होते हुए देखा था, और यकीन मानिए मेरे लिए यह बड़ा रोमांचकारी अनुभव था। मुझे कोई खास भूख तो थी नहीं, लेकिन बाकी सब लोगों ने छक कर खाया पिया और बिल कर्मा जी के खाते में डलाकर बाहर आ गए। जैसे तैसे गिरते पड़ते कर्मा जी भी बाहर आए। सभी लोग पान खाने चले गए, लेकिन कर्मा जी बड़ी कठिनाई से फितूर साहब की कार का सहारा लेकर खड़े हो गए। दो मिनट बाद जब वे गिरने को हुए तो इस गिरोह के अकेले सभ्य आदमी कंजी शक्कर ने सहारा देकर उन्हें कार में बिठा दिया। अपनी अर्ध टुन्न भलमन साहत में गंजी शक्कर ये नहीं देख पाए कि कर्मा जी गिर नहीं रहे थे, बल्कि शराब कबाब आदि के कॉम्बिनेशन को ओगल कर धरती माता के आंचल को अपने प्यार से सनाना चाहते थे। जब तक गंजी शक्कर जी समझ पाते, दो बातें एक साथ हो गईं। एक तो फितूर साहब पान खाकर आ गए और दूसरी ओर उनकी कार में बैठे कर्मा जी ने पीछे की सीट पर उल्टी कर दी। कॉमेडी को ट्रेजेडी में बदलते देर ना लगी। फितूर साहब ने गालियों का शब्दकोश कर्मा जी पर पूरा का पूरा उड़ेल दिया। बाकी लोग भी जोश में आ गए। खाना पीना सब हो ही चुका था, अब फुर्सत का समय था। गिरोह दो दलों में बंट गया, एक में सारा गैंग और दूसरी ओर मैं और गंजी शक्कर, जो कि कर्मा जी की दयनीय दशा को ध्यान में रखकर उन्हें कार से घर छोड़ने के पक्ष में थे। अपने स्कूटर पर जाने की उनकी हालत न थी और इस टुन्न हालत में दिल्ली के ऑटो रिक्शा में अकेले भेजने का मतलब था उनकी घड़ी, चेन, अंगूठी और ब्रेसलेट आदि से निजात पाना, हो सकता था उनकी जान से भी। लेकिन ये दूसरा दल उनकी जान वहीं पर उसी वक्त लेना चाहता था। मैं अकेला होश में था, इसलिए जब मैंने फितूर साहब को कंधे पकड़कर जोर से झिझोड़ा तो मेरी बात उन्हें एकदम समझ में आ गई। चूंकि गंजी शक्कर इस दुर्घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था, इसलिए पीछे की सीट पर बैठकर कर्मा जी को संभालने का काम उसके हिस्से में आया। फितूर साहब ने बड़बड़ाते हुए गाड़ी भंगपुरा की ओर दौड़ा दी। नशे में धुत्त तीनों लोग एक दूसरे पर वाक प्रहार करते जा रहे थे। तीनों शराबियों को एक साथ झगड़ा करते और बीच बीच में फलसफा झाड़ते देख सुनकर काफी मजा आ रहा था। कुछ ही देर में हम भंगपुरा में थे, लेकिन कर्मा जी का घर किसी ने ना देखा था। हर चौराहे से पहले फितूर साहब अपनी गाड़ी रोकते और गुस्से से पूछते, कर्मा जी कित्थे जाना है? पीछे की सीट से कर्मा जी उन्हीं इंदे से अपने दोनों हाथों से हवा में तलवार सी भांजते हुए उत्तर देते, सज्जे खब्बे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। झक मारकर फितूर साहब किसी भी तरफ गाड़ी मोड़ लेते और अगले चौराहे पर फिर वही सवाल, और कर्मा जी उसी तरह उनींदे से तलवार भांजते हुए दोहराते, सज्जे खब्बे। करीब आधे घंटे तक भंगपुरा की खाक छानने के बाद फितूर साहब और गंजी शक्कर जी ने एक वीरान सड़क पर कार रोकी और दरवाजा खोलकर कर्मा जी को बाहर धकेल दिया। कर्मा जी भी रुके बिना सामने की एक अंधेरी गली में गिरते पड़ते से गुम हो गए। उस रात मैं ठीक से सो ना सका, रात भर सोचता रहा कि ना जाने कर्मा जी किस नाली में पड़े हों। अगले दिन जब सुबह दफ्तर पहुंचा तो पाया कि कर्मा जी पहले से अपनी सीट पर बैठे कागजों के साथ धींगा मुश्ती कर रहे थे। कहना ना होगा कि गद्दे मैंने खुद ही जाकर खरीद लिए और दुकानदार ने उसी दिन घर भी पहुंचा दिए। धन्यवाद।
हिंदी को इंटरनेट की भाषा बनाने और कला की हर विधा से जोड़ने का हमने उठाया है बीड़ा। क्या आप हैं हमारे साथ? आज ही लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग, युवा उम्मीदों और प्रतिभाओं का हिंदुस्तानी मंच।